भी हम कर पाएंगे अच्छा है, और किस प्रकार से हम जाएंगे, क्योंकि हम मेनली इस सेशन, इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव था कि हम भागवतम के फ्लो को समझ सकें, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में किस प्रकार से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, किस प्रकार से ये ग्रंथ फ्लो होता है, क्योंकि बहुत सारी थीम है, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो कई बार जब भक्त लोग उसकी पढ़ाई करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। तो इस मेन कोर्स का मोटिव है उस कनेक्शन को स्टेब्लिश करना, और ये मैं बताना चाहता हूँ पहले कि ये भागवत विवाह कोर्स श्रीमद् भागवतम का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स हो सकता है, परंतु उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। जब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ना मैंडेटरी है, और ये कोर्स आपको हेल्प करेगा श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए। और हालांकि बहुत लंबा कोर्स है, कितने सेशन लगेंगे ये मुझे नहीं पता, बट जितना भी हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना बेनिफिट होगा, और जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। इनकेस अगर कहीं ट्रैवलिंग या कुछ अलग सर्विस आता है तो हम किसी दिन आगे पीछे कर सकते हैं, बट हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं किस स्पीड से जाता है। जिस स्पीड से जाएगा उसी तरह से मुझे भी पता चलेगा कि कितना समय लगने वाला है। तो अभी के लिए हमारा टारगेट रखते हैं हम शुरू के 3 कैंटो कंप्लीट करने का, उसके बाद नेक्स्ट 3 कैंटो, इस तरह से चार चार पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम टोटल 18,000 श्लोक हैं जो कि 12 स्कंध में डिवाइड किए गए हैं, और प्रथम स्कंध श्रीमद् भागवत का संदेश, भागवत संदेश मतलब श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड जैसा बोला जा सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो स्पीकर हैं सुखदेव गोस्वामी, वो प्रथम स्कंद में बोलना प्रारंभ नहीं करते हैं। वो 19वें अध्याय में परीक्षित महाराज के पास आते हैं, और पहला स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद जी ने वृंदावन में रह के इस स्कंद की रचना की थी, इस स्कंद का तात्पर्य लिखा था, और प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को वो मैंने पहले स्कंद में लिखा हुआ, इसलिए पहला स्कंद हम सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के पहले, इस्कॉन की स्थापना करने के पहले वृंदावन में रहते हुए इस स्कंद को लिखा, इसलिए इस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो श्रीमद् भागवतम के पहले 3 श्लोक जो आते हैं वो श्रीमद् भागवतम के मेन थीम श्लोक होते हैं, जो कि पूरे श्रीमद् भागवतम की थीम को सेट करते हैं, उसके बेसिस पे आगे के श्लोक होते हैं। और जिस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आप समझते हैं 3 तत्व पाए जाते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब सबसे पहले जानना भगवान के बारे में कि भगवान कौन है और हमारा उनसे क्या संबंध है, उसको संबंध बोला जाता है। उसके बाद होता है अभिधेय, अभिधेय का मतलब उस संबंध को स्थापित करने की जो पद्धति, जो प्रोसेस होती है उसको अभिधेय बोला जाता है। उसके बाद अभिधेय के बाद होता है प्रयोजन, प्रयोजन मतलब भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवान का संग प्राप्त करना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। तो ये 3 श्लोक जो है, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक, ये तीनों चीजों को प्रदर्शित करते हैं। पहला श्लोक संबंध के बारे में बताता है, दूसरा श्लोक अभिधेय के बारे में बताता है, तीसरा श्लोक प्रयोजन के बारे में बताता है। पहला श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार से है, जन्मादयस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्पुत्रसर्वोऽङ्गसाधाम्नास्वेन सदा निरस्तुकुहकं सत्यं परं धीमहि। इन 3 श्लोकों को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम फ्लो प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये 3 श्लोक इंट्रोडक्टरी श्लोक है। तो इस पहले श्लोक में श्रीमद भगवान श्री कृष्ण के परिभाषा बताई गई है, आध्यात्मिक सत्य की परिभाषा, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ। आध्यात्मिक सत्य जो है उसकी 7 पहचान बताई गई है। सबसे पहली पहचान क्या होती है उसकी, जन्मादि अस्य यतः। आध्यात्मिक सत्य भगवान कृष्ण जो है उनसे सब कुछ निकलता है, जन्म आदि मतलब सृष्टि, स्थिति और प्रलय, तीनों भगवान से, भगवान कृष्ण से निकलते हैं, ये उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक। जन्मादि अस्य यतः, जन्म आदि मतलब जन्म मेंटेनेंस और फिर मृत्यु। जन्मादि अस्यतः भगवान इन तीनों वस्तुओं के स्रोत हैं। अन्वयाद इतरता इतरता च अर्थेषु अविज्ञा, और भगवान डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार की सभी वस्तुओं को जानने वाले। अभिज्ञा, अभिज्ञा मतलब उनको सभी वस्तुओं का नॉलेज है। उसके बाद तीसरा है स्वराट, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। श्री प्रभुपाद बताते थे इस संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र नहीं है भगवान कृष्ण के अलावा। तो तीसरी क्वालिटी है स्वराट। उसके बाद चौथी क्वालिटी है भगवान की, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने वैदिक ज्ञान को आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी का जब गर्भोदक विष्णु के नाभि से जब उनका जन्म होता है, नाभि से जो कमल निकलता है उस पर उनका जन्म होता है, तो भगवान उनके हृदय में वैदिक ज्ञान की स्थापना करते हैं। उसके बाद पांचवा गुण है भगवान का, मुह्यंती यत सूरया, बड़े बड़े देवताओं को भी भगवान भ्रमित कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भगवान से भ्रमित हो जाते हैं। किस प्रकार से भ्रमित होते हैं? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिस प्रकार से कई बार मिराज होता है मरुस्थल में तो पानी नहीं रहता है, पानी पानी दिखाई देता है। इस प्रकार से भगवान सभी को, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सभी को बिविल्डर करते हैं, भ्रमित कर देते हैं। विनिमयो यथा विसर्गो मृषा, और उन्हीं के कारण ये भौतिक संसार जो वास्तविकता में टेम्परेरीली है, इस संसार में परमानेंट नहीं है, परंतु ये फैक्चुअल वास्तविक प्रतीत होते हैं भगवान की शक्ति के कारण। और लास्ट है धामना स्वेन सदा निरस्त कुरुत्वम, भगवान हमेशा अपने दिव्य संसार में स्थापित रहते हैं और लीलाएं करते हैं। तो कौन कौन सी सात कैरेक्टरिस्टिक्स हुई भगवान की? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जन्मादि अस्यतः, भगवान से सब कुछ सृष्टि स्थिति और प्रलय भगवान से निकलता है। दूसरा अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अविज्ञा, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान जानते हैं। उसके बाद तीसरा स्वराट, भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसके बाद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद मुह्यंती यत सूरया, सारे देवताओं को भ्रमित करते हैं और ऋषि मुनियों को भ्रमित करते हैं। उसके बाद विनिमयो यत विसर्गो मृषा, भगवान के कारण ही भौतिक संसार जो कि वास्तविकता में टेम्परेरी है परंतु हमें रियल प्रतीत होते हैं। और सातवां, भगवान अपने धाम में हमेशा निवास करते हैं और उनका धाम हमेशा इल्यूजन मोह से परे है। तो ये सात डेफिनेशन है एब्सोल्यूट ट्रुथ की, आध्यात्मिक सत्य की सात परिभाषाएं हैं, ये सात कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पहले श्लोक में आती है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य दिया है उस श्लोक का। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है श्रीमद भागवतम की ग्लोरीज, ये सात प्रकार के श्रीमद भागवतम को ग्लोरीफाई किया गया है, श्रीमद भागवतम की प्रशंसा की है सात तरीके से। दूसरे श्लोक में जय धर्मापूज्यत कैतवत्व परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरा सत्यो विद्यते प्रकृति सुभिस्तक्षणात्। इसमें बताते हैं, सबसे पहले हमने देखा संबंध जो है भगवान के बारे में, भगवान की डेफिनेशन। उसके बाद अभिधेय, भगवान तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है? श्रीमद भागवतम। तो श्रीमद भागवतम की ग्लोरी इस श्लोक में बताई गई है। और किस प्रकार से ये ग्लोरीज बताई गई हैं? ये ग्लोरीज हैं धर्म प्रज्जित कैतवत्व, संसार में श्रीमद भागवतम ग्रंथ में सबसे उच्च भागवत धर्म जो है भगवान की भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण। उसके अलावा जो भी संसार के कैटअप धर्म है, धोखा देने वाले धर्म है, छल धर्म है, उन सभी धर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है। उन धर्मों को बोला जाता है मटीरियली मोटिवेटेड रिलीजन। ऐसे कोई भी धर्म जिससे जिसमें भौतिक सुख की इच्छा हो या संसार में भोग करने की इच्छा हो या सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा हो, उन सारे के सारे धर्मों को श्रीमद भागवतम में रिजेक्ट किया गया। धर्म प्रोज्जित कैतव, कैतव मतलब धोखा देने वाले धर्म, धोखा देने वाले सभी धर्मों को श्रीमद भागवत में रिजेक्ट किया गया। और परम, परमो निर्मत सरा नाम सत, सबसे ऊंचा धर्म जो है भगवान भगवान के प्रति समर्पण, भगवान को प्रेम का धर्म, वो इस भागवत पुराण में स्थापित किया गया है। उसके बाद तीसरा, भागवत पुराण को कौन वैलेस कौन उसको स्वीकार कर सकता है? नरमत सराणाम सताम वेत्यम, ऐसे लोग श्रीमद भागवतम को समझ सकते हैं जिनके हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं है और जो साधु प्रवृत्ति के हैं, उन लोगों के लिए श्रीमद भागवतम बहुत वो श्रीमद भागवतम को रैलिस करते हैं, श्रीमद भागवतम को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद वास्तवम वस्तु, वास्तव वस्तु मतलब आध्यात्मिक सच्चाई, आध्यात्मिक सत्य को वास्तव वस्तु बोला जाता है। तो श्रीमद भागवत पुराण संसार की जो वास्तविक सच्चाई है उसको प्रकट करता है। उसके बाद पांचवा, तापत्रय उन्मूलनम, तीन प्रकार के जो ताप हैं, आदि आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इन तापों को श्रीमद भागवत दूर करता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। उन्मूलनम, उन्मूलनम एक शब्द है, आप जानते होंगे कि अगर किसी पेड़ को हम केवल ऊपर से काट दें, उसकी जड़ों को नहीं काटें, तो वो पेड़ फिर से आ जाता है वापस। तो पेड़ को परमानेंटली खत्म करने के लिए उसकी जड़ों को खत्म करना होता है। तो मूल मतलब जड़ होता है, उन्मूलनम मतलब जड़ से उखाड़ देना। तो श्रीमद भागवत पुराण जो है, जो भी इसको पढ़ता है, तीनों ताप जड़ से उखाड़ जाते हैं। उसके बाद महामुनि कृते, श्रीमद भागवत महामुनि व्यास देव के द्वारा बनाया गया है, जब वो अपने आध्यात्मिक जीवन के सबसे उच्च अवस्था में थे, उस समय उन्होंने इस श्रीमद भागवत ग्रंथ को लिखा था। किम वा परर ईश्वर, अगर किसी के पास भागवत ग्रंथ है तो उसको संसार में और कौन से शास्त्र की आवश्यकता है? संसार के सभी शास्त्रों का सार श्रीमद भागवत के अंदर है। उसके बाद लास्ट, ईश्वर सत्यो हृदि अभिवृद्धि, श्रीमद भागवत पढ़ने से ये निश्चित है कि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में, जो भी इसको पढ़ेगा उसके हृदय में हमेशा के लिए स्थापित हो जाए। कृति भी सुशुभि तक्षणात्, जैसे ही कोई बहुत ध्यान से और बहुत विनम्रता से श्रीमद भागवत ग्रंथ का अध्ययन करेगा, श्रीमद भागवत ग्रंथ को सुनेगा, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाएंगे, उसके भगवान उसके हृदय में तुरंत प्रकट होके वहां पे स्थापित हो जाएंगे। तो ये सात श्रीमद भागवतम की विशेषताएं हैं, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद भागवतम। पहला है धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो, धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र, संसार के जितने भी भौतिक धर्म हैं उन सारे धर्मों को इसमें रिजेक्ट किया गया है, और भागवत धर्म, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति समर्पण को इस भागवत में बताया गया। और ये भगवान के प्रति भक्ति जो है ये परम है, तो ये भागवत का दूसरा लक्षण है कि संसार के सबसे ऊंचे धर्म को इसको दिया गया, इसमें दिया गया है। निर्मत सराणाम सताम वेद्यम, जो लोग जिनके हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं है, ऐसे लोग इस भागवत को समझ सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से। उसके बाद वास्तवम वस्तु, इस ये संसार वास्तव नहीं माना जाता है, ये संसार अवास्तव है, श्रीमद भागवत जो है वो वास्तव वस्तु है, आध्यात्मिक सत्य जो है वो वास्तव वस्तु है, बाकी ये संसार जो है ये इल्यूजन, भ्रामक कहलाता है। तो चौथा है वास्तव वस्तु, भागवत में वास्तव वस्तु के बारे में बताया गया है। फिर पांचवा आता है तापत्रय उन्मूलनम, तीनों तापों को पूरी तरह से विनाश करता है। उसके बाद छठवा आता है महामुनि कृते, श्री व्यास देव जो कि संसार के सबसे बड़े मुनि है, उनके द्वारा ये भागवत ग्रंथ लिखा गया है। ईश्वर सद्यो हृदय अभिवृद्धि, जो भी इस भागवत को पढ़ता है भगवान उसके हृदय में तुरंत स्थापित हो जाते हैं, अगर कोई ध्यान से इसको पढ़ता है और सुनता है। इसके बाद तीसरा श्लोक आता है, तीसरे श्लोक को प्रयोजन बोला जाता है कि भागवत को पढ़ के किस प्रकार से उसको रसास्वादन किया जा सकता है। निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावक। ये तीनों श्लोक एक्चुअली याद करना चाहिए, श्रीमद भागवत के तीन सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीसरा श्लोक में सभी को इनवाइट किया जा रहा है कि आइए श्रीमद भागवतम का ये जो रस है इसका आस्वादन करिए। निगम कल्प तरु गलितम फलम, निगम कल्प तरु, सारे वैदिक शास्त्र जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों से संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं और भगवत भगवत भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। तो निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये वैदिक शास्त्र को अगर हम कल्प वृक्ष के जैसे मानते हैं तो श्रीमद भागवतम गलितम फलम उसका सबसे पका हुआ फल है। वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वृक्ष का फल। तो श्रीमद भागवत जो है वो वृक्ष का सबसे पका हुआ फल है। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। और जब किसी वृक्ष के फल को तोते के द्वारा जूठा किया जाता है तो फल और मीठा हो जाता है। आप में से जो गांव के हैं उनने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आम या अलग अलग छोटे छोटे फल भी जो होते हैं, अमरूद और ये सब फल, कोई तोता अगर उसको टच कर देता है, जूठा कर देता है, तो और मीठा हो जाता है। तो इसी तरह से ये भागवतम ग्रंथ जो है ऑलरेडी वैदिक शास्त्रों का सबसे पका हुआ फल है, और इसको जब सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुख से बोला तो ये और ज्यादा मीठा हो। सुख मुखात अमृत द्रव संयुत, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलने के कारण इसमें ये अमृत के समान हो। पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत जो है ये रस का समुद्र है। जैसे रसम आलयम, इसी तरह से विद्या आलयम, विद्यालय जहां पे विद्या मिलती है, तो रसमालय मतलब जहां पे रस प्राप्त होता है। मुहु रहो रसिका भुवि भावो का। तो इस भागवत रस को, भागवत रसमालय को जो भी संसार के भावुक भक्त हैं, जिनके अंदर कृष्ण प्रेम के लिए भाव है, वो इस भागवत को रिलीज करते हैं। इसमें इस तरह से लिखा है कि आइए इस भागवत के रस का पान करिए। तो ये तीन श्लोकों के बाद श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है, भागवतम का बैकग्राउंड प्रारंभ होता है। कलयुग जस्ट प्रारंभ होने वाला था, और कलयुग को जब लोगों, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कलयुग की अवस्था को देखा, क्योंकि ऋषि मुनि त्रिकालज्ञ होते हैं, तो कलयुग की अवस्था को जब उन्होंने देखा कि कलयुग में क्या होगा, तो उन्होंने 1,000 साल तक यज्ञ करने के, यज्ञ नैमिषारण्य तीर्थ में किया गया। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि इस नैमिषारण्य से भगवान ने एक बार धरती की माप, पूरे ब्रह्मांड की माप की थी, अपने चक्र को वहां पे स्थापित किया था और वहां से पूरी धरती का माप लिया था, पूरे ब्रह्मांड की माप ली थी। इसलिए नैमिषारण्य बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। लखनऊ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर अभी ये निमसा नाम से एक गांव है, वहां पे स्थित है। तो वहां पे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं, और इन सभी के लीडर होते हैं शौनक ऋषि। ये सभी इकट्ठा होते हैं 1,000 साल तक तपस्या करने के लिए, भगवान उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए। एक दिन ये सभी ऋषि मुनि अपने सुबह के क्रियाकलाप पूरा करने के बाद श्री सूत गोस्वामी वहां पे स्थित होते हैं, उनको व्यासासन प्रदान करते हैं और उनसे प्रश्न पूछना चालू करते हैं। श्री सूत गोस्वामी जो है, इन्होंने श्रीमद भागवतम तब सुना था जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोला था, उस समय इन्होंने भागवतम सुना था। तो भागवतम श्री व्यासदेव ने लिखा, फिर उन्होंने अपने पुत्र को सिखाया, और फिर उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवत बोला। और उसमें नारद मुनि भी बैठे थे, व्यासदेव बैठे थे और सुत गोस्वामी भी बैठे थे, और सुत गोस्वामी ने इस भागवत को सुना, और अभी सुत गोस्वामी इन ऋषि मुनियों को ये भागवत सुनाई। तो एक दिन सुबह के समय ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को व्यासासन ऑफर किए और उनसे पूछते, सबसे पहले देखना होगा अगर हम किसी गुरु के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो पहले उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड श्रीमद भागवतम में भी दिया है कि ऋषि मुनियों ने सबसे पहले सुत गोस्वामी को प्रशंसा किया। सुत गोस्वामी के कौन कौन से गुण बताते हैं? पहला गुण बताते हैं अनघा। अनघा मतलब जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, ये जो सभी पापों से मुक्त, वो बताते हैं सुत गोस्वामी से कि आप सभी पापों से मुक्त हैं। और अधितानि आख्यातानि, सारे शास्त्र पुराण और इतिहास को आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आख्यातानि उनको आप लोगों को एक्सप्लेन भी करते हैं। उसके बाद अगला गुण बताते हैं वेद विदाम श्रेष्ठ, आप वेदों के निचोड़ को जानते हैं और व्यास देव के ज्ञान को जानते हैं। और उसके बाद सौम्य स्निग्ध, ब्रूहि स्निग्ध शिष्य से गुरुवो गुरुयम अप्यतः, इस तरह से 8वां श्लोक आता है। सौम्य का मतलब बहुत शुद्ध और बहुत सिंपल, और स्निग्ध का मतलब बहुत आज्ञाकारी, सबमिसिव। तो ये गुण होना चाहिए श्रीमद् भागवतम के स्पीकर में। हम इसे समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो बोलते हैं, ये जो श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में पालन करते हैं या दूसरों को सिखाते हैं, उनके पास ये गुण होना चाहिए। कौन कौन से गुण हैं? अनघ मतलब जिस सारे पाप के कार्यों से मुक्त, अधीतानी आख्यातानी शास्त्रों को अच्छे से जानना और लोगों को शास्त्रों को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, साथ साथ वेद विदाम श्रेष्ठ, और वेदों का ज्ञान होना चाहिए और श्रेष्ठ मतलब ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठ होना चाहिए। उसके बाद सौम्य, सौम्य मतलब विनम्र होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, और स्निग्ध मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए। ये क्वालिटीज, सुत गोस्वामी के इन क्वालिटीज को ग्लोरीफाई किया उनसे। फिर उन्होंने ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे, और ये 6 प्रश्न जो हैं इस पहले अध्याय को कंप्लीट करते हैं, और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में अगले 2 अध्याय श्री सुत गोस्वामी बोलते हैं। तो ये 6 प्रश्न क्या क्या है? ये 6 प्रश्न भागवत के ओरिजिनल 6 प्रश्न हैं। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, याद रख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न उन लोगों ने पूछा, इन सभी ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी से पहला प्रश्न पूछा है कि संसार के लोगों के लिए अल्टीमेट और एब्सोल्यूट अच्छा क्या है, सबसे अच्छा क्या है संसार के लोगों के लिए, और इस संसार में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए सबसे ज्यादा भला किस चीज में होगा, ये उनका पहला प्रश्न था। और पहला प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो ऋषियों के मन में आया कि शायद अगर हम इस तरह से पूछेंगे तो हो सकता है सुत गोस्वामी सारे शास्त्रों को बताना चालू कर दे, क्योंकि सभी लोगों के लिए भला तो शास्त्र के निर्देश हैं। तो ऐसा सोच के उन्होंने सोचा कि हमें पूछना चाहिए कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि सारे शास्त्रों को समझने की क्षमता कलयुग में लोगों के अंदर नहीं होगी। तो इन लोगों ने पूछा कि कलयुग के लोग तो बहुत ज्यादा कम कम लाइफ स्पेन है उनका, बहुत लड़ाई करने वाले हैं, आलसी हैं, और उनका दिमाग भी ज्यादा नहीं चलता है, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, इसलिए पूरे शास्त्रों को पढ़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए शास्त्रों के निचोड़ों को आप हमें बताइए, शास्त्रों का जो सार है वो आप एक्सप्लेन करिए। तो पहला प्रश्न था संसार के लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, उनका आध्यात्मिक भला किस प्रकार से हो सकता है। दूसरा प्रश्न है सभी शास्त्रों का सार के रूप में हमें वो चीज बताइए। तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में क्यों आए, उनके भगवान के संसार में आने का क्या कारण था, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लेते हैं। और चौथा प्रश्न है कि चौथे प्रश्न के पहले वो कुछ कुछ श्लोक बोलते हैं कि भगवान भगवान कृष्ण जो है वो तो इस संसार के हमेशा भले के लिए आते हैं, और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि कोई अगर भगवान कृष्ण का नाम अनकॉन्शियसली लेता है तब भी उसको बेनिफिट मिलता है, और भगवान के भक्त गंगा से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि गंगा नदी में तो स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है, परंतु भक्तों के दर्शन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। बहुत अच्छा श्लोक है वो, 15 नंबर का श्लोक, यत्पाद संशय सूता मुनय प्रसमायन सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टः स्वधुन्यापोनु सेवया। कि भक्त जो है वो गंगा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, फिर चौथा प्रश्न आता है भगवान के लीला अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान ने किस प्रकार से कौन कौन से अवतार लिए, उनमें क्या क्या लीलाएं की, ये वो लोग जानना चाहते हैं। 5वां प्रश्न पूछते हैं भगवान के पुरुष अवतार के बारे में, भगवान के जो 3 पुरुष अवतार हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, इन तीनों के बारे में वो जानना चाहते हैं। और 6वां प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कलयुग के जाने, कलयुग तो अभी आ चुका है और भगवान कृष्ण संसार से चले गए हैं, तो भगवान कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसका आश्रय लेता है, ये उनके 6 प्रश्न थे। इसका मीनिंग है कि जब भगवान यहाँ पे थे तो भगवान ने धर्म की स्थापना की, उस समय भगवान के निर्देश ही धर्म के समान थे, परंतु भगवान जब इस संसार से चले गए तो अभी धर्म किसके आश्रय में है, भगवान धर्म ने किसका शरण लिया है। तो ये भागवत के 6 ओरिजिनल प्रश्न हैं, ओरिजिनल मीन्स फर्स्ट, जिनके उत्तर में भागवत चालू हुआ। और हम देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर हर स्कंद में आएंगे। फिर तो से हम एक बार रिवाइज करेंगे। पहला प्रश्न था संसार के सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न था कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न भगवान के लीला अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में जानना चाहते हैं। छठवां प्रश्न भगवान कृष्ण के संसार से जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो हालांकि इनके उत्तर अगले दो अध्यायों में उन्होंने दिए हैं सुत गोस्वामी ने, परंतु जो लीला अवतार वाले प्रश्न है वो पुरुष अवतार वाले प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर पूरे भागवत में चलते रहते हैं क्योंकि भगवान की लीला अवतार पूरे भागवतम में आए हुए हैं। तो ये प्रश्न के उत्तर लास्ट तक हमें मिलते रहते हैं। 6 प्रश्नों के उत्तर अगले दो अध्यायों में इनके उत्तर शॉर्ट आंसर दिए जाते हैं, पर उसके बाद फिर इनके उत्तर लगातार चलते रहते हैं। तो इस तरह से पहला अध्याय कंप्लीट होता है। पहला अध्याय रिलेटिवली छोटा है, 23-24 श्लोक है उसमें, और उसका मेन थीम यही है कि 6 प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने पूछे हैं। इसके बाद दूसरा अध्याय आता है डिविनिटी और डिवाइन सर्विस। इस अध्याय में श्री सुत गोस्वामी कुछ प्रश्नों का उत्तर प्रदान करते हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछने के पहले सभी ऋषि मुनियों ने सुत गोस्वामी को ग्लोरीफाई किया था, उत्तर देने के पहले भी श्री सुत गोस्वामी ऋषि मुनियों के प्रश्नों को ग्लोरीफाई करते हैं। पहले श्लोक में बताते हैं कि मुनयः साधु पृष्टोयम् भवद्भ्यो लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्ध। आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो बहुत परफेक्ट है, पूरी तरह से अच्छे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न भवद्भ्यो लोक मंगलम, इस संसार के मंगल के लिए ये प्रश्न आपने पूछे हैं, और क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर से पूरे संसार को संतुष्टि प्रदान होगी। इस तरह से एक श्लोक में वो ग्लोरीफाई करते हैं। फिर अगले श्लोक में श्री सुत गोस्वामी अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते करते श्री सुत गोस्वामी बताते हैं कि मैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। जब वो इस संसार में आए तो जन्म लेते ही साथ वो जंगल में चले गए। उनके पिता उनको रोकना चाहते थे, परंतु श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूरे संसार से विरक्त थे, विरक्त आत्मा थे, और उन्होंने फिर इस संसार के लोगों को, स्पेशली कलयुग के लोगों को लाइट प्रदान करने के लिए, आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करने के लिए उन्होंने इस भागवत ग्रंथ को रचना की। तो बहुत अच्छा श्लोक आता है, वो श्लोक आप याद करना चाहिए। 3रा श्लोक होगा शायद, पहले स्कंद 2 अध्याय का 3रा श्लोक। यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमतिशतां तमोन्धम संसारिणाम करुणयाह पुराण गुह्यम तम व्यास सोमम उपयामि गुरुम मुनीनाम। इस श्लोक में बताते हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम, मेरे गुरु जो श्री सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने अखिल श्रुति सारम एकम, संसार के जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सभी का सार उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया। अध्यात्म दीपम, और ये संसार का सार जो है ये वास्तविकता में जो कलयुग के जो अंधेरे में रहने वाले जीव हैं उन सभी के लिए अध्यात्म दीपम, अध्यात्म के दिए के समान, और ये अध्यात्म का दिया श्रीमद् भागवत जो है ये पूरे संसार में जो भी अंधकार में व्यस्त लोग हैं उन सभी का अंधकार का विनाश करेगा। संसारिणाम करुणया, संसार के रहने वाले लोगों के प्रति करुणा के द्वारा इन्होंने इस पुराण को रचना की है। तम व्यास सूनुम उपयामि गुरु मुनिना, ऐसे श्री व्यास देव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद भागवतम के ओरिजिनल राइटर जो कि व्यास देव है उनको प्रणाम करते हैं, नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं जो कि संसार के देवता हैं, कलयुग के देवता हैं, और सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं और व्यास देव को प्रणाम करते हैं। ये फेमस श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 4था श्लोक, और उसके बाद फिर वो इसके उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले और दूसरे प्रश्न दोनों का उत्तर एक्चुअली भक्ति योग बताते हैं और बहुत सारे श्लोकों से समझाते हैं कि किस प्रकार से भक्ति योग ही है जो कि इस संसार में पूर्णता को प्रदान कर सकता है। और पहला श्लोक, पहला ये दूसरा अध्याय जो है शिल प्रभुपाद के द्वारा मैक्सिमम श्लोक का प्रभुपाद ने लेक्चर दिए हैं इस दूसरे अध्याय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिल प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं इन श्लोकों के ऊपर, वो आप सभी को सुनना चाहिए। पहले स्कंद दूसरे अध्याय, प्रभुपाद जी ने बहुत पावरफुल लेक्चर्स दिए इन सारे श्लोकों के ऊपर। तो ये आंसर देना चालू करते हैं कि पूरे संसार के लिए सबसे ऊंचा धर्म है ऐसा धर्म जिससे कि व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शुद्ध और अहेतु की अप्रतिहता इस प्रकार की भक्ति कर सके कि जो जिसका कोई कारण नहीं। सामान्यतः लोग भगवान के पास जाते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। प्रभुपाद जी का एक पास टाइम है इस तरह से आशीर्वाद बाबा के जैसे। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए थे, प्रभुपाद अपने सन्यासी शिष्यों के साथ खड़े थे। तो वो आके प्रभुपाद जी से बोलते हैं, प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद ने बोला, आशीर्वाद में क्या चाहिए आपको? तो उनसे आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा नहीं था, तो वो आंसर दे नहीं पाए। फिर बोलते हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बेटी की शादी हो जाए, मेरा पैर दर्द ठीक हो जाए। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखो, ये सब आशीर्वाद नहीं देता हूँ मैं, मेरा आशीर्वाद ये है, ये सब जो सन्यासी हैं, अगर ये आशीर्वाद चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो व्यक्ति डर गया। तो प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि लोग सामान्यतः साधु के पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो भौतिक चीजें मांगना चाहते हैं। तो यहाँ पे है, पूरे संसार के लिए सबसे ऊंचा धर्म है जो कि अहेतु की हो, जब हम केवल भगवान के प्रेम के कारण उनके पास आए और अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब हमेशा, ऐसा नहीं कि हमने 16 सोमवार किया फिर उद्यापन कर दिया, वैभव लक्ष्मी व्रत किया उद्यापन कर दिया। संसार में लोग इसी तरह से करते हैं ना, व्रत करते हैं तो उसका उद्यापन करते हैं, परंतु भगवत भक्ति इस प्रकार से नहीं है। उद्यापन नहीं होता है, चालू हुआ तो गोलोक वृंदावन में भी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए संसार का सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की अहेतु की और अप्रतिहता इस तरह से भगवान की सेवा करना, क्योंकि अगर कोई इस तरह से भगवान की सेवा करता है तभी वो आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। और इस प्रकार की भक्ति अगर कोई करता है तो उसको जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतु, उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले और दूसरे प्रश्न का एक ही उत्तर है, भक्ति, भक्ति योग। ये पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रश्न आ सकता है, ऋषियों के हृदय में भी ये प्रश्न आ सकता है कि कैसे, किस प्रकार से भक्ति ही केवल है, वर्णाश्रम क्यों नहीं। तो इसका उत्तर आता है कि वर्णाश्रम धर्म जो है, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी है, परंतु उसके वर्णाश्रम धर्म केवल तभी तक उसको कार्य करेगा जब तक, अगर वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान के प्रति भक्ति प्राप्ति नहीं हो पाई, भगवान के बारे में सुनने में आकर्षण नहीं हो पाया, तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो उस व्यक्ति के लिए यूजलेस होगा। जैसे अभी हम देखते हैं लोग वर्णाश्रम, मतलब बहुत लोग ब्राह्मण जो होते हैं वो गर्वित होते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और भी अलग अलग जाति प्रथा चल रही है, हालांकि वर्णाश्रम तो नहीं है परंतु देखने में इस प्रकार से लगता है, कास्ट सिस्टम जैसा, परंतु इसका केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण नहीं है। तो ये एक यूजलेस वस्तु है, भागवत में इस प्रकार से आता है, अगर वर्णाश्रम के सेंटर में भगवान नहीं है तो वो यूजलेस है। और आदमी के जीवन की इच्छाएं जो है कभी भी भोग के लिए नहीं जाना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। और साथ साथ भगवान को प्राप्त करने के सबसे अच्छा उपाय है वर्णाश्रम में रह के भगवान भगवान को अपने कार्यों को अर्पित करना और एकांत मन से भगवान की सेवा करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना और भगवान के बारे में भगवान की पूजा करना। ये श्लोक से इस प्रश्न के उत्तर, इन दो प्रश्नों के उत्तर को सब्सटेंशिएट किया जाता है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। और इसके बाद फिर अगले 6 श्लोकों में श्री सुत गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार से भक्ति प्रोग्रेस करता है। जब हम किसी भक्त की सेवा करते हैं, भक्त की सेवा करने से हमें भगवान बारे में सुनने में आकर्षण प्राप्त होता है, और जब भगवान की कथा सुनने में आकर्षण प्राप्त होता है तो ऐसे भगवान की जब वो कथा सुनना चालू करता है तो उस कथा सुनने के प्रभाव से भगवान उसके हृदय में जो गंदगी है उसका विनाश करना प्रारंभ करते हैं। अभद्राणी विधु नोति सहस्त्रता, भगवान उस गंदगी का विनाश करते हैं, और जब गंदगी का विनाश होने लगता है तो उसका उसके भक्त के हृदय में भक्ति की स्थापना होने लगती है, और तो जब गंदगी पूरी तरह से विनाश हो जाती है तो नैष्ठिक की भक्ति आ जाती है। अभी हमारी जो भक्ति है वो नैष्ठिक ही नहीं है, अभी हमारी अनिश्चित भक्ति है, क्योंकि अभी हमारी भक्ति कभी अच्छी होती है कभी कम खराब होती है, परंतु निष्ठा भक्ति ऐसी होती है कि जो भक्त होता है वो सिंसियर हो जाता है, हमेशा भक्ति अच्छे से करना चाहता है। उसके बाद जब नैष्ठिक भक्ति आती है तो रजोगुण तमोगुण का विनाश हो जाता है, काम लोभ का भी विनाश हो जाता है, और व्यक्ति पूरी तरह से सत्वगुण में आ जाता है, और सत्वगुण में आके भगवत भक्ति में योग नियोजित हो जाता है, भगवत तत्व को जान के व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये भक्ति की प्रोग्रेस बता रहे हैं, कैसे भक्ति चालू होती है शुद्ध भक्त की सेवा से, और व्यक्ति को सुनने की इच्छा होती है, और जब वो सुनता है तो उसके अनर्थों का विनाश होता है, अनर्थों का विनाश होने के बाद फिर व्यक्ति रजोगुण तमोगुण का विनाश हो जाता है, तो वो प्रसन्न मन से भगवत भक्ति करता है और मुक्त मुक्ति को प्राप्त होता है। तो भक्ति प्रोसेस फॉलो करने से एक तो हृदय में जो ग्रंथि है, हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ये सब ग्रंथि है, इसका विनाश होता है, और कर्म का साइकिल खत्म हो जाता है, कर्म चक्र खत्म हो जाता है, और व्यक्ति अपने आप को पहचानता है और भगवान को पहचानता है, और इस तरह से श्री सुत गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति जो है वो इम्फेसाइज करते हैं, पूरे अध्याय में इम्फेसाइज करते हैं कि भक्ति जो है ये सभी शास्त्रों का सार भी है और संसार के लोगों के लिए सबसे ऊंचा रास्ता भी है। उसके बाद वो स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से भगवान वासुदेव जो हैं वो ही केवल जानने योग्य हैं, बाकी सभी देवता जो इस संसार के हैं वो भगवान के अंश हैं, वो केवल वासुदेव को ही जानना चाहिए, और डेमी गॉड वर्शिप को रिजेक्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है जो कि याद भी रखना चाहिए, बहुत आसान भी है ये श्लोक। श्लोक इस प्रकार से है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मख वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। इस श्लोक का मीनिंग है वासुदेव परा वेदा, सभी वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण जानने योग्य हैं, वासुदेव परा मखा, सभी यज्ञों के द्वारा भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए, वासुदेव परा योगा, सभी योगा भगवान को समझने के लिए है, वासुदेव परक क्रिया, सारे कार्य भगवान को अर्पित करने के लिए, सारा ज्ञान भगवान को समर्पित करने के लिए है, तपस्या भगवान को खुश करने के लिए की जाती है, सबसे बड़ा धर्म भगवान की सेवा करना है, और भगवान को ही प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो ये यहाँ पे उत्तर खत्म हुआ। इसके बाद जो चौथा प्रश्न था कि भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में डिस्क्राइब करिए, वो सुखदेव गोस्वामी अभी बताना चालू करते। पहले वो दूसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया, भक्ति के बारे में बताया किस प्रकार से भक्ति टॉप मोस्ट है, भगवान वासुदेव के बारे में बताया कि किस प्रकार से भगवान वासुदेव ही टॉप मोस्ट है, उनकी भक्ति करना चाहिए। अभी चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले दूसरे का उत्तर देने के बाद तीसरे का उत्तर नहीं दिया, डायरेक्टली चौथे का उत्तर दिया, और तीसरे का उत्तर बाद में देंगे। उसका क्या कारण है? क्योंकि तीसरा प्रश्न था भगवान ने देवकी के गर्भ में क्यों जन्म लिया, क्यों अवतार लिया, और चौथा प्रश्न था भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में जानना। तो सुत गोस्वामी ने सोचा कि भगवान ने देवकी के गर्भ में तो जन्म तभी लिया है जब संसार का उत्पत्ति हुआ, और संसार का उत्पत्ति कैसे होता है, पुरुष अवतार के द्वारा, गर्भो दक्षाय विष्णु शिरो दक्षाय विष्णु। तो उन्होंने सोचा पहले हम संसार की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, उसके बाद भगवान ने इस संसार में क्यों अवतार लिया वो बताएंगे, उसके बाद भगवान की लीलाएं बताएंगे। तो भगवान की लीलाएं तीसरे अध्याय में आती है, और दूसरे अध्याय में ये सूत्र गोस्वामी में बता रहे हैं कि किस प्रकार से कार्नो दक्षाई विष्णु आते हैं, नारायण से उनका इंकारनेशन होता है, भगवान अपनी आंखों से मटेरियल एनर्जी को एजिटेट करते हैं और फिर तीन गुणों से निकलते हैं, फिर भगवान हर ब्रह्मांड में जाते हैं गर्भो दक्षाई विष्णु के रूप में और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी फिर सृष्टि की द्वितीय रचना करते हैं। उसके बाद भगवान तीसरा रूप लेते हैं, क्षीर दक्षाई विष्णु परमात्मा का रूप, और सभी जीवों के हृदय में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार से कोषावतारों के बारे में करीब 3-4 श्लोकों में सूत्र गोस्वामी बताते हैं और इस प्रकार से दूसरा अध्याय एंड होता है। और तीसरा अध्याय जो है, तीसरा अध्याय ऑलमोस्ट तीसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर तीसरे अध्याय में दिया जाता है और साथ साथ भगवान की लीला अवतारों का भी डिस्क्रिप्शन, केवल एक एक श्लोक में, आधे आधे श्लोक में उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। और जैसा कि हम मैंने पहले बताया था कि लीला अवतारों का डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में पूरे भागवतम में होता रहता है, यहाँ पे केवल एक एक श्लोक में या एक दो श्लोकों में उन्होंने डिस्कस किया है, परंतु पूरे भागवत में फिर लीला अवतारों का डिस्क्रिप्शन होता रहता है। तो तीसरे अवतार, तीसरे श्लोक, तीसरे अध्याय के शुरू में पुरुष अवतारों का डिस्क्रिप्शन है, कार्नो दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु का। और उसके बाद 22 श्लोक, श्लोक संख्या 6 से लेके श्लोक संख्या 29 तक, 24 श्लोकों में भगवान के 22 अवतारों का डिस्क्रिप्शन है। हालांकि भगवान के अवतार असंख्य हैं, परंतु श्रील सूत्र गोस्वामी उसमें से 22 अवतारों का डिस्क्रिप्शन बताते हैं। और कौन कौन से अवतार, जैसे कुमार अवतारों के बारे में, कुमार जो है भगवान के ज्ञान के अवतार है। उसके बाद भगवान का बोल कच्च वराह अवतार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने हिरण्याक्ष को मारा और धरती को बचाया। उसके बाद नारद मुनि भगवान के एक अवतार हैं जो कि भक्ति के प्रवर्तक आचार्य हैं। उसके बाद नर नारायण जो कि तपस्या के रूप, तपस्या को स्थापित करते हैं। उसके बाद भगवान कपिल देव जो कि सांख्य को स्थापित करते हैं। उसके बाद दत्तात्रेय जो कि अत्रि और अनुसूया के अवतार पुत्र हैं और वो प्रहलाद और सभी बाकी जो हैं क्षत्रियो उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद राजा यज्ञ जो कि आकुति और रुचि के पुत्र हैं। जब हम चतुर्थ स्कंद डिस्कस करेंगे तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये यज्ञ जो है एक मनु मनु के रूप में उन्होंने कार्य किया। उसके बाद ऋषभ देव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ऋषभ देव जिन्होंने जो कि भरत महाराज के पुत्र पिता है, भरत महाराज जो कि जिनके नाम से संसार का नाम भारतवर्ष है, उनके पिता ऋषभ देव। उसके बाद पृथु महाराज का डिस्क्रिप्शन करते हैं, जिन्होंने राजाओं का कर्तव्य क्या होना चाहिए वो स्थापित किया। उसके बाद मत्स्य अवतार जो कि संसार को बचाते हैं। उसके बाद कूर्म अवतार जिन्होंने समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने ऊपर रखा था। उसके बाद धन्वंतरी अवतार समुद्र मंथन के समय जो अमृत को लेके आए थे। उसके बाद आते हैं मोहिनी मूर्ति, जब समुद्र मंथन में दैत्यों ने अमृत ले लिया था तो उनसे छीन के देवताओं के पास लेके आए थे। उसके बाद 18वां नृसिंह देव प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे। उसके बाद वामन देव बलि महाराज से जमीन वापस करने के लिए। उसके बाद परशुराम जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार खत्म किया। उसके बाद व्यास देव जो कि सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं, शास्त्रों को लिखने के लिए आए थे। उसके बाद भगवान रामचंद्र जिन्होंने रावण का वध किया और आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा की स्थापना की। उसके बाद कृष्ण और बलराम जिन्होंने संसार से बर्डन को खत्म किया। और उसके बाद बुद्ध जो कि कलयुग में आते हैं और जो कि नास्तिक लोग हैं उनको वो शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद कल्कि, कल्कि का डिस्क्रिप्शन इसमें आया है, कल्कि के पिता विष्णु यश नाम से होंगे और वो संभलपुर, संभल नाम से स्थान पर जन्म लेंगे। प्रभुपाद जी बताते थे ये संभल मतलब संबलपुर, जो कि अभी बिहार, बिहार या झारखंड में संबलपुर नाम से आता है, वहां पे कल्कि का अवतार होगा। तो ये 22 अवतारों का डिस्क्रिप्शन श्री सूत्र गोस्वामी बताते हैं और साथ में बताते हैं कि अवतारों भी असंख्य, अवतारों की कोई संख्या नहीं है, मैं केवल ये मुख्य मुख्य अवतारों का नाम ले रहा हूँ। और भगवान के अवतार इतने सारे हैं जितने के समुद्र में लगातार लहरें चलती रहती, उस तरह से भगवान अवतार लेते हैं। और इसके अलावा भगवान की विभूति होती है, ऋषि मुनि और जैमी गॉड, ये भगवान की विभूतियां होती। और इसके बाद ये स्थापित करते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम को हालांकि उन्होंने अवतारों की लिस्ट में रखा था, परंतु 28वें श्लोक में ये स्थापित करते हैं, एते चाम स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये बाकी सभी जो अवतार हैं ये या तो भगवान के अंश हैं या कला हैं, परंतु भगवान कृष्ण स्वयं भगवान, और ये हर युग में जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसमें इससे पता चलता है ये जो 28वां श्लोक है ये वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम का परिभाष सूत्र है, जो कि श्रीमद् भागवतम का परिभाषा प्रदान करता है, भगवान कृष्ण को सबसे भगवान कृष्ण की उत्तमता को प्रदर्शित करता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी इनकार्नेशन जितने भी अवतार बताए गए हैं वो सभी कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण स्वयं अवतारी है। तो इसलिए 28वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का। और इसके बाद श्री सुत गोस्वामी विराट रूप के बारे में डिस्कस करते हैं। विराट रूप जो है वो एक इमेजिनरी काल्पनिक रूप है, परंतु उसका उसको केवल इसलिए दिखाया जाता है जिससे कि जो लोग भौतिक संसार में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं वो भगवान से रिलेट कर सके, अन्यथा विराट रूप जो है वो भक्तों के लिए आवश्यक नहीं है। पर चूंकि ये भगवान का एक प्रकार का अवतार है इसलिए श्री सुत गोस्वामी विराट रूप का भी डिस्कस करते हैं, ब्रह्म को भी डिस्कस करते हैं और फिर बताते हैं कौन भगवान समझ सकता है। एक श्लोक आता है सवेद धातु पदवीं परस्य, उस श्लोक में बताते हैं कि भगवान को वही समझ सकते हैं यो मायाया संततया अनुवृत्तया, जिनके पास ये तीन गुण होते हैं, अमायाया, अमायाया मतलब विदाउट प्रिटेंशन, विदाउट रिजर्वेशन, उनका कोई अपना रिजर्वेशन नहीं होता है, भगवान की हमेशा सेवा करना चाहते हैं। अमायाया संततया, संततया मतलब बिना रुके हुए, अनइंटरप्टेड, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 6 दिन भगवान की सेवा करेंगे, संडे को सो जाएंगे, संडे को हम फ्री रहेंगे, नहीं, संततया मतलब लगातार सेवा करेंगे। और अनुवृत्तिया, अनुवृत्तिया मतलब भगवान के अनुकूल होके सेवा करें, आचार्यों के अनुकूल होके सेवा करें। तो जो इन तीन गुणों से भगवान की सेवा करते हैं भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से तीन गुण? अमायाया संततया अनुवृत्तिया, बिना रिजर्वेशन के, बिना रुके हुए और भगवान के अनुकूल होके जो सेवा करते हैं भगवान को समझ सकते हैं। और इसके बाद अंत में जस्ट 30वें अध्याय के अंत में श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज को बताया जाता है कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, और उत्तम श्लोक चरितम भगवान के लीलाओं के बारे में बताया जाता है, और इसको श्री व्यास देव ने लिखा है संसार के सभी लोगों के अल्टीमेट गुड के लिए। और फिर बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण, अंतिम जो 6वां प्रश्न था उसका उसका उत्तर बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने धाम में चले गए तो उनके साथ धर्म ज्ञान ये सब भी चला गया, परंतु कलयुग में आके कलौ नष्ट दशा में सम, कलयुग में जो लोगों की दृष्टि पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तो भगवान फिर से भागवत पुराण के रूप में अवतार लेते हैं, पुराण अर्क अधुनोदिता। तो ये भागवत पुराण स्वयं भगवान है, भागवत पुराण जो है ये भगवान कृष्ण का ग्रंथ अवतार है। जैसे भगवान राम के रूप में आते हैं तो राम अवतार है, पुरुष अवतार है, लीला अवतार है, गुण अवतार है, इसी तरह से श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान का ग्रंथ अवतार है। इस संसार से जाने के बाद भगवान फिर से इस संसार में श्रीमद् भागवतम पुराण के रूप में आते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर संसार के सारे धर्म, सारा ज्ञान, सब कुछ श्रीमद् भागवत के अंदर आता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, श्रीमद् भागवतम को सुनता है, पढ़ता है, उसके आधार पर जीवन जीता है, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। और फिर सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था जब वो महाराज परीक्षित को बता रहे थे, और मैंने ये भागवतम इस प्रकार से सीखा, अभी मैं इस भागवतम को उसी तरह से बताने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से मैंने इसको सीखा। तो यहाँ पे 30वां अध्याय कंप्लीट होता है। तो जस्ट हम एक बार रिवाइज करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न था संसार के सभी जीवों के लिए सबसे अच्छा क्या है और सारे शास्त्रों का सार क्या है। इसका उत्तर, दोनों का उत्तर सेम ही उत्तर है, भक्ति, जो कि इस अध्याय में हमने डिस्कस किया। इसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न जो था भगवान कृष्ण का अवतार, पुरुष अवतार और लीला अवतार, इसका डिस्कशन है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था इस संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए, और जो सत्व गुण में जीव हैं उनसे अपना संबंध स्थापित करके उनको भगवत धाम ले जाने के लिए। और पुरुष अवतारों का हमने डिस्क्रिप्शन देखा, फिर लीला अवतारों का हमने डिस्क्रिप्शन 30वें अध्याय में देखा। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न, और फिर 6वां प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया। इसका उत्तर है धर्म श्रीमद भागवतम की शरण में गया। श्रीमद भागवतम भगवान के ग्रंथ अवतार के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये शुरू के 3 अध्याय कंप्लीट होते हैं। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेक्शन था, परंतु चौथे अध्याय से स्टार्ट होगा, स्टोरी स्टार्ट होगा। नारद मुनि का जो स्टोरी है, नारद और व्यास का संवाद जो कि हमने कुछ महीने पहले किया भी था, तो वो स्टार्ट होगा। और उसके बाद नारद व्यास का संवाद खत्म होने के बाद परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, तो वो बताते समय सुत गोस्वामी, फिर अश्वत्थामा का पास टाइम बताते हैं, फिर भगवान कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, भीष्म देव की प्रार्थनाएं आती हैं, उसके बाद भगवान द्वारका से हस्तिनापुर जाते हैं, फिर परीक्षित का जन्म होता है, फिर पांडव अपना घर छोड़ते हैं, उसके बाद परीक्षित राजा बनते हैं, फिर परीक्षित को श्राप मिलता है, परीक्षित को श्राप मिलने के बाद सुखदेव गोस्वामी आते हैं। तो अगले सेशन से, चौथे अध्याय से भागवतम फर्स्ट कैंटो का स्टोरी डिस्कस होगा। ये शुरू के 3 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत फिलोसॉफिकल भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 3 अध्याय। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कल भी पूछ सकते हैं, जब भी आपको लगे तो पूछ सकते हैं। और कल हम 4था अध्याय और 5वां अध्याय डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, नारद मुनि और व्यास देव के बीच में जो वार्तालाप होता है। ओके, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे
हरे कृष्ण
कृष्ण
प्रभु जी, पूछिए
यस प्रभु,
प्रभु
यस
जी।
आशुतोष।
ये यस प्रभु जी, वो प्रभु पूछ लेंगे, उन्होंने पहले बोला।
ओके, एनीवे कोई भी पूछ सकते हो।
ओके
अनम्यूट
तमाम
करके। हाँ कुछ आवाज नहीं आ रही है, या तो आप कुछ। हाँ बताइए।
हाल ही बाबू जी, बाबू जी ये एक युग में कितने साल होते हैं?
हर युग में अलग अलग होते हैं। कलयुग में 4,32,000 साल है, द्वापर युग में 8,64,000 साल है, त्रेता युग में 12,96,000 साल साल है, और सत्ययुग में 17,28,000 साल। हर युग में अलग अलग होते हैं।
ये डिसाइड कैसे होता है, मतलब कैसे मालूम
भगवान ने
पड़ेगा
डिसाइड किया है? क्या मालूम कैसे पड़ेगा? ये तो कैलेंडर में भी है, वो कैलेंडर शास्त्रों के आधार पर बनाए जाते हैं। पंचांग जो होते हैं ना, वो शास्त्रों के आधार पर बनाए जाते हैं, तो उसमें पता चलता है कौन सा साल निकल गया। जो वैदिक कैलेंडर है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, उसके आधार पर ये बनाए जाते हैं। अभी कलयुग के 5,000 से ज्यादा समय निकल चुका है।
अच्छा, 5,000 साल हो गए।
ओके आशुतोष प्रभु।
रोजी ये जो सुखदेव गोस्वामी जो ये बता रहे हैं, 19 लीला अवतार के नाम जो बताई लिस्ट थी, उसमें
22
चेतन महा 22
22
बाईस
बाईस
कृष्ण बलराम अच्छा वो भी थे, तो उसमें चेतन महाप्रभु का क्यों नहीं, वो भी तो लीला अवतार है।
चैतन्य महाप्रभु लीला अवतार नहीं है एक्चुअली। चैतन्य
अच्छा
महाप्रभु का नाम लीला अवतार में नहीं आता है, इन जनरल नहीं आता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हर युग में आते नहीं है, वो इस ब्रह्मा के जन्म में एक बार ही आते हैं। और जबकि ये जो है जनरल अवतारों का लिस्ट है, इसमें और भी अवतारों का नाम नहीं है, कई अवतारों का नाम नहीं है, पर चैतन्य महाप्रभु का स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस केवल स्पेशल अवतार है जो 1,000 साल 1,000 युगों में एक बार ही आते हैं, इसलिए उनका नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। और चैतन्य महाप्रभु सामान्यतः भगवान के जैसे अपने आप को प्रकट नहीं करते, भक्त के जैसे प्रकट करते, इसलिए इस प्रकार से उनका नाम लिखा नहीं जाता ओपनली, उनको छुपे हुए अवतार, छन्न अवतार बोला जाता है।
ओके प्रभु जी, थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी,
अरे कभी ये हार्दिक प्रभु के प्रश्न के लिए एक मैसेज आया था कि महाभारत में हर युग के कैलकुलेशन के लिए डिटेल दिए गए हैं, और वो ऑथेंटिक भी है क्योंकि ये सारे डिटेल भागवतम और भगवत गीता से मैच करते हैं, सारे नंबर्स मैच करते हैं। तो महाभारत में ये दिए गए हैं। एग्जैक्ट इस एग्जैक्ट जगह पे कहाँ पे है वो मैं पता करके बताऊंगा। यस प्रभु।
हरे
कृष्णा प्रभु।
मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। ये भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में थोड़ी जो समझ में नहीं आता, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, गरुड़ विष्णु और ये सब, इसको थोड़ा ब्रॉडली थोड़ा आपने बताया है, लेकिन इसको डिटेल में अगर आप कुछ समझा सके तो।
ओके, तीन प्रकार के विष्णु हैं और तीनों साई हैं। साई मतलब तीनों रेस्ट करते हैं। एक तो जैसे हम देखें सबसे पहले वैकुंठ में तो गोलोक वृंदावन भगवान कृष्ण रहते हैं, तो कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम के बाद फिर चार वासुदेव शंकर संग ये आते हैं, उसके बाद नारायण आते हैं जो कि वैकुंठ लोग हैं, और फिर नारायण से इस संसार में महाविष्णु निकलते हैं। इन महाविष्णु को ही कारण और रक्षाई विष्णु बोला जाता है, और ये महाविष्णु भौतिक संसार की रचना करते हैं, भौतिक संसार का पहला क्रिएशन महाविष्णु करते हैं। और ये महाविष्णु क्या करते हैं, उनकी निगाहों से उनकी आंखों से रेज निकलती है, वो जो महाकाल के रूप में भगवान शिव के रूप में, और भौतिक प्रकृति को एजिटेट करते हैं, उससे भौतिक प्रकृति प्रारंभ होती है, जीव का जीव सब प्रकृति में आना चालू होते हैं। और फिर इन महाविष्णु की जो जो भी इनकी रोएं हैं शरीर में, जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उन बाल में से जो स्पेस में से बबल्स निकलते हैं इनके बॉडी में से, और हर बबल एक एक ब्रह्मांड है
जी।
हमारा जो ब्रह्मांड है एक बबल है जो उनके शरीर में से निकला हुआ, इस प्रकार से अनलिमिटेड ब्रह्मांड। और फिर ये अपने आप को और अवतार लेते हैं और हर ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। तो महाविष्णु केवल एक हैं, परंतु जब वो हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं तो गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, और उस ब्रह्मांड में जाके ये एक गर्भोदक समुद्र रचना होती है, उस समुद्र में ये लेट जाते हैं, और फिर उस ब्रह्मांड में उस इनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी पूरा क्रिएशन करते हैं, और फिर सभी जीवों के हृदय में जाने के लिए फिर से अवतार लेते हैं, उसको परमात्मा बोला जाता है, उसी का नाम है क्षीरोदकशायी विष्णु। तो तीन प्रकार के पुरुष अवतार हैं, कारणोदकशायी विष्णु जिनको महाविष्णु भी बोलते हैं वो अवतार लेते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु हर ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मा को जन्म देते हैं
जी।
उसके बाद गर्भोदकशायी विष्णु एक और अवतार लेते हैं, सभी जीवों के हृदय में जाते हैं और उनको क्षीरोदकशायी विष्णु बोलते हैं, और ये क्षीरोदकशायी विष्णु है ये परमात्मा कहलाते हैं, सामान्यतः हम उनको परमात्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है प्रभु।
तो ये खाली मनुष्यों में ऐसा है या हर जीव में, जीवों में ना,
हर जीव में,
हर जीव में, जितने भी जितनी हमारी योनियां हैं सब सबकी ना,
हर जीव में, हर निर्जीव में, हर जगह पे होते हैं। हर परमाणु के अंदर आप देखेंगे, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के अंदर जो होता है, प्रोटॉन के अंदर ये ये क्षीरोदकशायी विष्णु परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा हर जगह स्थित है। आपने देखा तो प्रहलाद ने बोला था कि दीवाल के अंदर भी भगवान है,
क्योंकि
उनको भगवान दीवाल के अंदर दिखते थे, और नरसिंहदेव वहां से निकल भी आए थे
जी।
तो वो परमात्मा जो है वो क्षीरोदकशायी विष्णु।
थैंक यू ब्रोजी, थैंक यू सो मच,
थैंक यू।
हरे कृष्ण।
दिल्ली में कहाँ थे, कौन से मंदिर से कनेक्टेड है?
पंजाबी बाग जो हमारा राधिका रमन टेम्पल है ना,
राधा रमन जानते हो, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु
का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही।
ओके,
हरे कृष्ण,
कल मिलते हैं
बहुत, इसी टाइम। हाँ, बहुत बहुत, मैं पहली बार ज्वाइन किया आपको, इससे पहले भी आपने शुरू किया था क्या?
ये टॉपिक आज से चालू हुआ, इससे पहले और कुछ टॉपिक, अलग अलग टॉपिक चलते थे।
थैंक यू सो मच, थैंक यू,
ओके,
वंडरफुल क्लास,
मिलते हैं फिर से।
हरे कृष्णा, जय
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, मीटिंग ओवर हो चुकी है, आप सब लोग लीव कर सकते हैं।